आज की आवाज आ रहा है, आज की इस भट्टी की शुरुआत विदेश की एक कहानी से करते हैं। गलीली की एक झील थी और एक सुबह ईसा मसीह और उसके 12 शिष्य एक नाव में बैठे और उस झील में जाने लगे। दोपहर हो गई, सारे शिष्य जागे हुए थे और जीसस क्राइस्ट सो गए और अचानक तूफान आ गया, अचानक घनघोर वर्षा होने लगी और अचानक चारों ओर आंधी, नाव हिलने लगी, हवाएं जोर जोर से चलने लगी, मौसम बदल गया। जहाज में पानी भरने लगा, हवाओं के थपेड़े, जहाज अब डूबी तब डूबी। सभी शिष्य घबरा गए, भागने लगे इधर से उधर, उधर से उधर, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। प्रार्थना करने लगे भगवान से, परंतु तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था, साहिल कहीं दिख नहीं रहा था। ऐसे में वो देखते हैं कि यह व्यक्ति सोया पड़ा है, जिनको अभी अभी उन्होंने अपना गुरु जैसा समझा था, जिनको ये लगा था जैसे ये ईश्वर पुत्र है, रबाय जिसको कहते हैं उनकी भाषा में। तो वो उसको जाकर उठाते हैं, मास्टर उठो देखो क्या हो रहा है। ईसा मसीह उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और अपना हाथ उस ओर करते हैं और कहते हैं शांत शांत शांत, पीस बी स्टिल, पीस बी स्टिल। और देखते ही देखते तूफान रुक जाता है, नाव स्थिर हो जाती है, बादल छट जाते हैं, मौसम खुल जाता है और तब ईसा मसीह अपने उन शिष्यों से कहते हैं, हे कम ईमान वालों, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, क्या इतना भी विश्वास नहीं कि तुम्हारी नाव में कौन बैठा है। हे कम ईमान वालों, क्या ये भूल गए जिस नाव में मैं बैठा हूं क्या वो डूब सकती है, जहां मैं बैठा हूं क्या तूफान उस नाव को भटका सकता है। ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, क्या इतना भी निश्चय नहीं, क्या इतना भी विश्वास नहीं। किस नाव में बैठे हैं हम किस नाव में बैठे हैं, इस नाव में हम बैठे हैं, उस नाव का खेवैया कौन है, कौन है। तो जिस नाव का खेवैया शिव बाबा स्वयं है, जिस शिप का पायलट वो स्वयं है, जिस नैया का केवट स्वयं परमात्मा है, क्या वो नाव डूब सकती है, परंतु हमें कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि ये नाव डूब रही है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि तूफान बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं? क्यों ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियां जो जीवन में आ रही है हमसे कई गुना बड़ी है, जबकि बड़ा कौन है? ये मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा है। सभी अपनी डायरी में एक संकल्प लिखना है, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं, हर परिस्थिति से बड़ा कौन है? मैं हूं। रामायण में दिखाया है राम जी और सीता मैया और लक्ष्मण केवट की नाव में बैठे हैं और जा रहे हैं, यमुना पार कर रहे हैं। केवट बहुत चतुर भक्त दिखाया है भगवान का, कभी नाव इस ओर ले जाता है तो कभी उस ओर ले जाता है, कभी यहां ले जाता है तो कभी वहां ले जाता है। राम उसको कहते हैं, केवट हमें डर लग रहा है, नाव ऐसी ना चलाओ। वो कहता है, प्रभु यदि आपको डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। क्या कहता है? यदि आपको डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। क्योंकि केवट बहुत चतुर भक्त है, वो जानता है यदि आत्मा परमात्मा का हाथ पकड़े तो कोई भरोसा नहीं, परंतु यदि स्वयं भगवान ही मेरा हाथ पकड़ ले तो ये नैया कभी डूब सकती है? तो हाथ किसने पकड़ा है? दिखाई दे रहा है? देख लो एक बार अपना हाथ, किसने पकड़ा है? स्वयं भगवान ने तुम्हारे हाथ पकड़े हैं। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कल जब हम नागपुर से इधर आ रहे थे तो अग्रवाल जी साथ में थे, यहां पर है जी, बैठी है। तो इन्होंने अचानक से अपने मोबाइल में गीत एक बजा दिया, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो हमने उनसे कहा कि कल की भट्टी की शुरुआत इसी गीत से और इसी क्लास से करेंगे। सोचा था कुछ और पर बदल दिया। एक रात अंधियारी ती दिशाए कारी कारी, एक रात अंधियारी ती दिशाए कारी कारी। रात का अंधकार है, घटाटोप अंधकार है, कुछ भी नजर नहीं आता है, कलयुग का प्रभाव है, विकार चारों ओर है, दिशा दिशा में अंधकार है, तिमिर है, कहां जाए? एक नन्हा सा दिया था कहीं जल रहा, कौन है वो दिया? कौन है? हम, आत्मा रूपी दिया जग रहा है, उस आत्मा का दिया जग रहा है जिसने अभी अभी संगम पर प्रभु को पाया है, जिसकी ज्योति अब जगी है। ऐसा दिया जल रहा था, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन, आस थी उसे प्रभु के वरदान की। कहीं दूर था तूफान, जग को मसलने मचल रहा था। ये लड़ाई है, यह कहानी है दिए की और तूफान की। तो आज हम इसी तूफान की चर्चा करेंगे, आज हम इसी दिए के दृढ़ संकल्प की चर्चा करेंगे। उसने बीड़ा था उठाया, अरे भलाई का, ऐसा वो दिया जिसने विश्व कल्याण का बीड़ा उठाया है। उसकी लड़ाई किससे है? तूफान से। कहीं दूर था तूफान, था दिए से बलवान, दिए से बलवान था। क्यों बलवान था? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। परंतु जीत किसकी है इस लड़ाई में? किसकी लड़ाई जीत है? तूफान भागा रे मैदान से, अंत में तूफान भागा रे मैदान से। गीत में वर्णन है, मुरलियों में गीत आता है कई बार, सभी ने सुना है ना गीत। इस ब्राह्मण जीवन में हमें भगवान मिल गए, दिए को परम ज्योति मिल गई है, उसमें नवीनतम बल भर गया है, इसलिए उसकी विजय निश्चित है। तीन संकल्प लिखना है, सभी जानते हैं, फिर भी मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले की माला है। हमारे साथ वो है जो सब कुछ कर सकता है, वह सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। महाभारत में एक उदाहरण दिखाया है, द्रौपदी स्वयंवर, अर्जुन वहां आता है छद्म वेश धारण कर अपने भाइयों के साथ गुप्त वेश में, श्री कृष्ण भी उनके साथ है। शर्त होती है वहां पर, नीचे देखना है पानी में और तीर कहां चलाना है? ऊपर, जहां पर एक मछली घूम रही है उसकी आंख में तीर चलाना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ जाओ तीर चलाओ। अर्जुन उनसे कहता है कि हर बार सब कुछ मैं ही करूं, कभी कभी तुम भी तो कुछ किया करो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जाओ और तीर चलाओ, क्योंकि मैं जो कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते। अर्जुन पूछता है ऐसा वो क्या है जो मैं नहीं कर सकता और तुम कर सकते हो? क्या तुम बाण चला सकते हो? क्या मेरे जैसे धनुर्धर हो? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं जो कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते। तुम तीर चलाओ, मैं पानी को स्थिर कर दूंगा। मैं क्या कर सकता हूं? जो पानी है नीचे उसको स्थिर कर सकता हूं, जो तुम नहीं कर सकते। जब भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? जब भगवान हमारे साथ है तो असंभव ही संभव हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, ऐसा उसका सामर्थ्य है। जो बोल नहीं सकता वो बोलने लगता है, जो चढ़ नहीं सकता वो चढ़ने लगता है। तत्कृपा तमहम बंदे, ऐसी उसकी परम कृपा है। तो जीवन में चाहे कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, घनघोर घटा छाई गीत में है, बड़े बड़े पेपर आ जाए, परीक्षाएं आ जाए, परंतु जीत किसकी है? हमारी। किसी ज्योतिष को एक राजा कह दे, कोई राजा को कोई ज्योतिषी अगर कह दे युद्ध में जाने से पहले कि तुम्हारी विजय निश्चित है, जाओ और जाकर लड़ो, तो किस उमंग से और किस उत्साह से और किस सामर्थ्य से वो जाएगा? वैसे भगवान भी कौन है, ज्योतिषी है, हमारा हाथ लिया है उसने, दे दो बाबा को ऐसे हाथ दिखाने के लिए, दो सभी। बाबा ने हाथ पकड़कर, बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम्हारी विजय निश्चित है। किसने कह दिया? स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक, इस सृष्टि का रचयिता, वह सर्व शक्तियों से संपन्न सर्वोच्च सत्ता यह कह रही है। तो आज की इस क्लास में ऐसे हम 8 तूफानों की चर्चा करेंगे, जो कि ब्राह्मण जीवन में आते हैं। कितने तूफान? 8 तूफानों की चर्चा करेंगे। इससे पहले फिर से इसी संकल्प में सभी स्थित हो जाएंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले की माला हार है। सबसे पहला तूफान, अपवित्रता। जैसे ही ब्राह्मण जीवन धारण किया, बाबा ने वरदान दिया है पवित्र भव और योगी भव का। और पवित्रता ही इस यज्ञ का आधार है, और पवित्रता ही इस जीवन का केंद्र बिंदु है, और पवित्रता के आधार पर ही संपूर्ण यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है। जो कुछ यहां पर हुआ हो रहा है, सेवाओं का विस्तार, सबका आधार पवित्रता है। जो कुछ ब्रह्मा ने सहन किया था केवल इसके लिए, दादियों ने जो सहन किया था केवल इसके लिए, लोगों ने आकर ब्रह्मा से कहा था कि इस पवित्रता को यहां से निकाल दो तो आपकी संस्था में लाखों की भीड़ लग जाएगी, सारे विरोध समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था? क्या उत्तर दिया था बाबा ने? मुझे भीड़ बकरियां नहीं चाहिए, कौन चाहिए? शेर और शेरनियां चाहिए, जो ऐसी दौड़ लगाए कि संसार जाग जाए। वो दहाड़ है पवित्रता की, वो दहाड़ है अखंड ब्रह्मचर्य की। कलयुग का प्रभाव, हवाओं में विकार है, हवाओं में वासनाएं हैं। यदि हम सावधान नहीं रहे तो विकार की यह आंधी, विकार का यह सुनामी, काम विकार का यह सैलाब हमारे जीवन को डुबो देगा, जितने घर बसाए थे ज्ञान और योग के, सब बाहर ले जाने का सामर्थ्य उसमें है। परंतु यदि हम अपनी धारणाओं में मजबूत हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं। सर पटक पटक, पग झटक झटक, तूफान भागा रे मैदान से, वो तूफान भाग जाएगा। पवित्र आत्माओं के पास आने की उसमें शक्ति नहीं। तो क्या ऐसी हमारी पवित्रता अखंड है? चेकिंग करनी है इस भट्टी में। यदि कहीं पर भी देह का आकर्षण हो रहा है, क्या है इस देह में, सोचना है। कैसा सुख है इस देह में? क्या इस देह में कोई सुख है? अस्थि पंजर और मलमूत्र से भरा यह देह, कैसा सुख इसमें? जनिक सुख अंततो गत्वा दुख में परिणित होता है। जो जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है, उसका परिणाम है दुख। इस बात को अपनी बुद्धि में बिठा लेना है। अखंड ब्रह्मचर्य और अखंड पवित्रता के व्रत को धारण करना है। अगले आज और कल की एक क्लास हम केवल इस पर करेंगे, संपूर्ण पवित्रता पर। उसमें 21 प्रकार की पवित्रता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 21 प्रकार की संपूर्ण पवित्रता, वो 21 बातें जब होगी तो ही संपूर्ण पवित्रता कहा जाएगा। तो पहला पेपर जो ब्राह्मण जीवन में आता है, जैसे ही आत्मा भगवान को पहचानती है, खुशी में भाव विभोर होती है, ज्ञान सुनती है और आगे बढ़ती है, मधुबन जाती है, भगवान से मिलती है, वापस आती है, सेवाएं बहुत करती है, सब कुछ करते 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 कभी कभी वही पुराने संस्कार, वही पुराने दैहिक दृष्टि के संस्कार, वही बोध के संस्कार जागृत होते हैं। अचानक न मन न चित, सब कुछ ठीक, फिर भी वो संस्कार जैसे कि नीचे से ऊपर आ जाता है। इसका मतलब उसे संपूर्ण रीति से नष्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वासनाएं छिपी है। जैसे दूध को हम गर्म करते हैं, नीचे आग है, जब तक आग है तो फिर वो ऊपर आके बाहर आता है, आग को निकाल दो तो फिर से नीचे बैठ जाता है। यदि साधना की अग्नि न हो तो सब कुछ साधारण सा हो जाता है। आंख चाहिए, आंख किसकी? आंख संपूर्ण पवित्रता की आंख। क्या है ऐसा इस देह में? कौन सा सौंदर्य है इस देह में? क्या वास्तव में इस देह में कुछ सौंदर्य है या भ्रांति है? यदि है तो जाओ, जाकर देखो अस्पतालों में उन मरीजों को, जाओ जाकर देखो उन कैंसर के पेशेंट्स को, उन टीबी के पेशेंट्स को, उन डायलिसिस के पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। कहां है सौंदर्य? जाओ जाकर देखो बुढ़ापे से ग्रस्त उस व्यक्ति को, दांत गिर गए, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, कहां है सौंदर्य? ये सड़ी हुई देह है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के 15 नवंबर 2003 कुमारों से मुलाकात। पवित्रता ब्राह्मणों का स्वधर्म है। यदि कोई ये कहता है कि थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है, इस देह को स्पर्श करना अर्थात सांप को स्पर्श करना, और अव्यक्त महावाक्य 1972 सांप में विष होता है, इसलिए आज के बाद कुमारों से मुलाकात 72 सभी कुमार प्रतिज्ञा करेंगे कि केवल और केवल मस्तक मणि को देखेंगे, देह को नहीं। साकार महावाक्य है, जब जब तुम देह को देखते हो समझना वो विकर्म है। एक शब्द में, एक साकार मुरली में बाबा ने विकर्म की परिभाषा दी है, देह को देखना अर्थात विकर्म, मस्तक मणि को देखना अर्थात पुण्य कर्म। मैं क्या देख रहा हूं? जितने विकर्म तुमने अव्यक्त भावाक्य बाबा के काम विकार से किए हैं, उतने और किसी विकार से नहीं किए हैं। इसलिए अब समय है संपूर्ण पवित्रता का, अब समय है फिर प्रतिज्ञा करने का, अब समय है वो जो मार्ग है उसको छोड़ देने का, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले तो क्या वो ये सोचता है इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए? उसका क्या लेना देना मेडिकल से? या मेडिकल में कोई स्टूडेंट चला जाए, कोई ये सोचता है रोड को कैसे बनाऊं, बिल्डिंग को कैसे बनाऊं? अपना तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है। इसके लिए कैंसिल, जो जो दृश्य, जो जो सीन, जो जो गीत, जो जो संगीत, जो जो फिल्म, पोस्टर, मूवी, क्लिप, ऑडियो, वीडियो विकार को प्रोत्साहित करते हैं, क्या करना है उन सबको? कैंसिल। एक संकल्प हम आप सबको दे रहे हैं, लिख लेना है सभी, छोटा सा संकल्प है परंतु बहुत शक्तिशाली। बाबा ने मना किया है, क्या संकल्प है? बाबा ने मना किया है। बहुत सारी चीजें जो विकारों को उत्पन्न करे, बहुत सारी वस्तुएं, चीजें, दृश्य जो विकारों को प्रोत्साहित करे, उन सबको क्या कर देना है? कैंसिल। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी नाव निकल पड़ी है, साकार महावाक्य है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, शोधों की नाव खड़ी है, तुम्हारी नाव निकल पड़ी है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम हो राज ऋषि, तुम्हारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। तो सबसे पहला जो तूफान आता है वो है अपवित्रता का। यदि हमारे जीवन में थोड़ी भी आंधी वायु हवाएं चल रही है काम की, सबसे पहले इसको समाप्त करना है। दूसरा तूफान शरीर से आने वाला तूफान, शरीर की बीमारियां। पुरुषार्थ बहुत करना चाहते हैं परंतु शरीर में बीमारियां आएगी। पुरुषार्थ बहुत करना चाहते हैं परंतु थकान। पुरुषार्थ बहुत करना चाहते हैं, उमंग है परंतु कुछ ना कुछ होते रहता है देह को, और ये तूफान भी आएगा। और जब बीमारी आ जाए तो क्या सोचना है? क्या सोचेंगे यदि बीमारी आ जाए तो? हिसाब किताब चुप तो हो गया है, बहुत ही रटा रटाया सा उत्तर है ब्राह्मणों का। दूसरा उत्तर बताओ कुछ, यदि बीमारी आ जाए तो क्या सोचेंगे और क्या करेंगे? अच्छा है, अच्छा है इसी जन्म में आ गई, क्या क्या सोचेंगे? पेपर है, पेपर को पास किया जाता है, ये क्या है? पेपर है, और इस पेपर को मुझे पास करना है, और क्या सोचेंगे? पीछे से बोझ कम हो रहा है धीरे धीरे, और क्या सोचेंगे? पीछे से भाई क्या करेंगे? सुनाई नहीं आ रहा है हमें, क्या सोचेंगे? बाबा क्या पिला रहा है? डोज, उमंग दिला रहा है, किस लिए? बीमारी के रूप में। एक अव्यक्त मुरली है 1995 की, जिसमें बाबा ने कहा है यदि बीमारी आ जाए तो क्या करो। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाता है और यदि उस मेहमान की तुम बहुत महिमा करो तो वो खुशी खुशी से जाएगा, यदि बीमारी आ जाए तो कहो वाह व्याधि वाह। क्या कहना है? वाह व्याधि वाह, ऐसी बीमारी आज तक किसको नहीं हुई, मुझे हो गई, वाह भाग्य है। यदि ये सोचेंगे मुझे ही क्यों आती है, वाह मी, अगर भी एक बीमारी से ठीक हुए दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी से ठीक हुए तीसरी बीमारी, जीवन के प्रति नकारात्मक भाव, कंप्लेन का भाव, शिकायत है जीवन से बहुत गहरी, बाबा से भी शिकायत है इस देह में सब कुछ होगा। शरीर का कर्म भोग है और वो आएगा, कभी ना कभी उसको आना है। इसके लिए ना तो उदास होना है, ना तो शिकायत का भाव हो, कोई कंप्लेन का भाव नहीं। यदि हमारा कंप्लेनिंग नेचर हो तो हम उससे कभी भी खुश नहीं रह सकते, निरंतर दुख रहेगा जीवन में। जैसे किसी गुरु के पास एक शिष्य आया था धनुर्विद्या सीखने के लिए, परंतु जब भी वो धनुर्विद्या चलाता था बाहर के जो कुछ उसके विद्यार्थी थे उसे बहुत परेशान करते थे, बहुत डिस्टर्ब करते थे, और वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता था छोटी छोटी बात में। तो एक बार वो गुरु उसको एक झरने के पास ले गए जो झरना नीचे आ रहा था और बह रहा था। वहां पर बहते बहते बीच में एक पत्थर था और वो झरने का मंद मंद पानी कभी पत्थर के ऊपर से जाता था तो कभी बाजू से जाता था। गुरु ने कहा देखो और सीखो, वो पानी उसको टकरा नहीं रहा है, क्या कर रहा है? अपना मार्ग बना रहा है, या तो बाजू से चला जाता है या तो ऊपर से चला जाता है, बहुत ही धीमी गति से। उसकी कोई शिकायत नहीं है कि क्यों ये पत्थर बीच में आ गया, मैं तो बहुत आराम से जा रहा था। सब कुछ होगा, सब कुछ आएगा, और जितने अधिक पेपर उतने अधिक हम क्या बनेंगे? शक्तिशाली बनेंगे। पेपर क्यों आते हैं? बाबा ने कहा पेपर आते हैं क्लास आगे बढ़ाने के लिए, पेपर आते हैं तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक की डिग्री देने के लिए, पेपर आते हैं तुम्हें अनुभव बनाने के लिए। अगर पेपर ही ना आए तो क्या ऐसा व्यक्ति अनुभवी बन सकता है? समझो एक बहुत बड़ी नाव बनाई है और उस नाव को जहाज के किनारे रखा गया है और लोगों से कहा जाए ये नाव बहुत शक्तिशाली नाव है, परंतु उस नाव को कभी भी समुद्र में नहीं लेके गए, केवल किनारे पर है। तो क्या नाव किनारों पर रखने के लिए बनाई जाती है? किस लिए बनाई जाती है? तूफानों से लड़ने के लिए। और जो नाव जितना अधिक तूफानों से लड़ेगी वह उतना अधिक शक्तिशाली बनेगी। तो देह में भी सब कुछ होगा, सबसे पहले तो उसकी देखभाल करनी है, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पहली बात तो यह, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, इसने भाग्य से संगम युग पर हमें भगवान मिला है, इस तन में जब आत्मा है तब इसलिए इस तन की भी बहुत देखभाल करनी है, इसके भोग में उसको डुबा नहीं देना है। हमने कहा देखभाल ताकि वो स्वस्थ रहे, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, पहला तो ये। और दूसरा, यदि बीमारी आ जाए तो उसको भी पेपर समझना है, वहां पर जिद और सिद्ध नहीं करना है कि हम तो दवाई नहीं खाएंगे। कहना होते हैं यह भी अहंकार है, और जब ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तब आते हैं। परंतु कंप्लेन का भाव ना हो, कृतज्ञता का भाव, जीवन में जो कुछ हो रहा है, जहां हमने जन्म लिया, जो मां बाप मिले, जो पति, जो पत्नी, जो बच्चे, जो मित्र संबंधी, जो ये ब्राह्मण परिवार और जीवन जो भी दे रहा है, सबके प्रति क्या करना है? धन्यवाद करना है। किसी एक आश्रम में एक नियम था, वहां पर जो भी विद्यार्थी आता था 10 साल तक कुछ नहीं बोलना है, 10 साल के बाद केवल 2 शब्द बोलने हैं। 10 साल के बाद कितने? केवल 2 शब्द। एक विद्यार्थी वहां आया उस गुरुकुल में, वो राज परिवार का था, भोग विलास में पला बड़ा था, वो उस गुरुकुल में रहा। 10 साल के बाद गुरु के पास आया उसी आश्रम में गुरु से मिलने, केवल 2 शब्द बोलने थे। उसने 2 शब्द कहे, बिस्तर कठोर, यहां का तुम्हारा जो बिस्तर है बहुत कठोर है, 2 शब्द बोलने थे। 10 साल फिर गुजर गए, 10 साल के बाद फिर आया, फिर कहा खाना गंदा, 2 शब्द बोलने थे, यहां का खाना बिल्कुल खराब है। 10 साल फिर गुजर गए, फिर आया, उसने कहा घर जाना, गुरु ने कहा पता था। 10 साल के बाद एक ही बार बोलने का अवसर मिला है, उसमें भी शिकायत। यहां से लोग मधुबन जाते हैं 6 मास के बाद, साल में एक बार, और वहां जाकर जितने बड़े हैं सबसे अपनी शिकायत सुनाते बैठते हैं उनको। जब भी बड़ों से मिलो तो हमारे पास लिस्ट है, एक ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये आत्मा ठीक नहीं, उसको समझाओ जरा। कृतज्ञता का भाव, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, दूसरा पेपर। तीसरा पेपर, लौकिक से पेपर, लौकिक घर, लौकिक परिवार, पति पत्नी बच्चे मित्र संबंधी समाज, उसमें 2 भाग है। एक तो यदि घर में सभी ज्ञान में चलते हैं उनसे भी पेपर आ सकता है, या तो कोई भी ज्ञान में नहीं चलता और सब विरोध करते हैं उनसे भी पेपर। जब घर में कोई भी ज्ञान में नहीं और हम अकेले हैं, सबका विरोध है, हर चीज में विरोध है, तो उनके प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए? माताएं बताएंगी, शुभ भावनाएं तो बताएं, दूसरा बताओ कुछ। इनका भी कल्याण हो जाए। और पर वो सताते हैं, अब क्या करें? मंजा से सकाश देनी है। और एक संकल्प उन सब के लिए रखना है। उनसे बहुत सारे पेपर आएंगे, उनसे बहुत सारे तूफान तो आएंगे, कभी रोकेंगे, कभी गाली देंगे, कभी कुछ करेंगे, विघ्न डालेंगे, सब कुछ होगा। परंतु एक बात भूलनी नहीं है, और वो संकल्प उनके लिए रखना है। जैसे एक माता है और जिसका युगल ज्ञान में नहीं है, 20 साल तक उसने उसका विरोध किया, 20 साल तक उसको बहुत बार मारा, बहुत उसको गालियां दी, बहुत कुछ किया। ऐसा कुछ नहीं है जो उसने नहीं किया, इतना उसने विरोध किया, सेंटर पर आकर घसीट कर ले गया, सब कुछ किया। कितना साल? 20 साल। और 20 साल के बाद वो एक दिन ज्ञान में आ गया। तो वो 20 साल जो थे तब भी वह देव कुल की ही तो आत्मा थी कि नहीं थी? तो हमें यही सोचना है कि ये भी देव कुल की आत्मा है। ये नहीं सोचो ये अज्ञानी है, ये नहीं सोचो इनकी समझ कम है, ये नहीं सोचो। क्या सोचना है? चाहे अज्ञानी है, चाहे विरोध करती है, चाहे सताती है, चाहे ज्ञान में नहीं है, सोचना यही है कि ये शिव बाबा की संतान है, ये महान आत्मा है, ये इसी देवकुल की आत्मा है। हिसाब नए हिसाब बनाने नहीं है। मुरलियों में आता है, माता है बाबा से कहती है, बाबा हमारा पति हमको बहुत सताता है, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा का क्या उत्तर है? तुमने भी सताया होगा, सुना है ना मुरलियों में आता है ये, तुमने भी सताया होगा। तो जो पेपर उनके द्वारा आएंगे उसे सहन करना है। क्या करना है? सहन करना है, प्रतिकार नहीं करना है, प्रतिशोध नहीं लेना है, विरोध नहीं करना है, तलवार हाथ से निकालकर लड़ना चालू नहीं करना है उनसे, सहन करना है। क्यों सहन करेंगे? दस कारण बताओ क्यों सहन करेंगे। पहले भाइयों की तरफ से क्यों सहन करना है? क्योंकि यह कर्म बंधन है, इसलिए सहन करना है। और क्यों सहन करना है? सहनशाह बनना है, इसलिए सहन करना है। और सहन क्यों करना है? फटाफट बताइए। क्योंकि मजबूत बनने के लिए, जितना हम सहन करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए। और सहना ही गहना है, वाह, सहना ही गहना है, कितनी अच्छी पॉइंट है। और सहन क्यों करेंगे? जितना सहन करेंगे उतनी शक्तिशाली अच्छी मूर्ति बनेंगे। और हिसाब किताब चुकतू होगा, सहन क्यों करना है? उनकी जागरूकता बढ़ेगी। और क्या होगा? तो उनका बोलना कम हो जाएगा हम यदि सहन करेंगे तो, और वो आ जाएंगे। और सहन क्यों करेंगे? हाँ, ड्रामा है तो क्या, ड्रामा में सहन करना है? बाबा की स्मृति दिलाने में सहयोगी है। और सहन क्यों करेंगे? अपने अनुभव से बताओ, सोचो तुरंत और बताओ क्यों सहन करना है कुमारिया। तो अपने आप सामने वाला क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और शांत हो ही नहीं और ही भड़कते रहे, हमारे शांत बैठने से कभी कभी और ही भड़क जाते हैं। सहन क्यों करना है और बताओ, माताओं की तरफ से ठोकर खाएंगे तो ठाकुर बनेंगे, और सहन क्यों करना है, क्योंकि हम पूर्वज है, क्योंकि हम महान आत्मा है, और सहन क्यों करना है, गले का हार बनना है तो क्या सहन करते रहो। हमने ही, ये हमारा हिसाब किताब है, इसको हमने बहुत सताया, वो हमको अब सता रहा है, इसलिए सहन करना है। ठीक है, और बताते जाओ फटाफट क्यों सहन करना है। हाँ, क्या बनना, हमारी आत्मा में शक्ति भरनी है, सामने वाले की भी, इसलिए सहन करना है। और सहन करके सफल होना है और उनको भी लाना है, और सहनशील नम्रचित बनता है, और सहन क्यों करना है, हर परिस्थिति से अपने आप को बड़ा समझना है, पर सहन क्यों करना है, ये प्रश्न है, वो प्रश्न नहीं है। अच्छा, जिसको हम सहन कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमको सहन कर रहा है, परंतु हमें केवल अपना सहन करना दिखता है, ये तो बहुत अच्छी और नई पॉइंट है। आप हम राजयोगी है और हमारे पास अष्ट शक्ति है, जिसमें सहन करने की एक शक्ति है, और सहन क्यों करना है, पिछला हिसाब किताब बोल दिया, हो गया चुप, दूसरा बताओ, पीछे से कोई भी नहीं बता रहा है, पीछे से बताएंगे माता है, जैसे कमल कीचड़ में, या सहन क्यों करना है, यह प्रश्न है, कमल नहीं सहन का बताओ, पतित से पावन नहीं, दूसरा बताओ। हर चीज में पतित से पावन नहीं लाना है क्या, ताकि घर का माहौल अच्छा रहे, वेरी गुड, अगर हम सहन ना करें तो घर का माहौल बिगड़ सकता है, एक यदि सहन करें तो बहुत कुछ स्थिर रह सकता है, तो ये एक कारण है। और सहन क्यों करना है, क्या क्या, सहनशीलता का कवच पहनना वो ठीक है, पर पहनना क्यों, ये पूछ रहे हम, क्यों पहने कवचशीलता, सहनशीलता का कवच, हाँ क्यों सहन करना है और बताओ, जो पॉइंट्स हो गए वो छोड़कर, क्योंकि हमें बाप समान बनना है, इसलिए हमको सहन करना पड़ेगा, और स्व परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन होगा, और सहनशीलता गुण है, शक्ति है, जिससे सेवा होगी, हो गया वो, और अव्यक्त महावाक्य बाबा के 1995, तो है सहन करना है, क्योंकि तुम्हें सहन करना है, क्योंकि ये बाप की आज्ञा है। तुम्हें सहन करना है क्योंकि ये स्वयं भगवान का आदेश है इस संगम पर, इसलिए सहन करना है। क्या फायदा हो गया, होगा नहीं होगा, सब एक तरफ, यह उसका आदेश है, इसलिए। तो पेपर आएंगे, जो ज्ञानी परिवार है वहां पर भी पेपर आएंगे, टकराव होगा संस्कारों का, वो भी पेपर आ सकता है, वो भी एक तूफान है, परंतु सभी तूफानों को हमें क्रॉस करना है। तो ये रहा कौन सा, तीसरा, पहला कहा अपवित्रता, दूसरा बीमारी, तीसरा लौकिक से तूफान, चौथा अलौकिक से तूफान। ब्राह्मणों के हिसाब किताब अव्यक्त महावाक्य ब्राह्मणों के द्वारा चुप्तू होने हैं। बाहर वालों से इतने चुप्तू नहीं होंगे, किससे चुप्तू होंगे? ब्राह्मणों से। ये ब्राह्मण परिवार एक एग्जामिनेशन हॉल है, एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। ब्राह्मण परिवार ही परीक्षा गृह है और एक एक ब्राह्मण आत्मा क्या है? पेपर। कब आती है? दिन भर आते ही रहते हैं। इस ब्राह्मण परिवार से भी पेपर आएंगे। अज्ञानियों से पेपर आए तो हम शक्तिशाली है, परंतु ज्ञानियों से आए तो, जो हमारे ही बाजू में बैठा था सुबह मुरली सुनते समय, जब बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बोलना है, और वही दोपहर को कटाक्ष व्यंगवान और छुआ लेकर सीधा इधर, और फिर दूसरे दिन फिर से बाजू में बैठा है, बच्चे तुम्हें सहनशील बनना है वो भी लिख रहा है डायरी में, तुम्हें बहुत मीठा बनना है वो भी लिख रहा है। जन्म जन्म हम किसके साथ रहे? बाहर वालों के साथ या ब्राह्मणों के साथ? किसके साथ ज्यादा रहे? सतयुग त्रेता में देवताओं के साथ, द्वापर में वही देवता नीचे उतरे, और सारे ब्राह्मण कौन बने? बड़े बड़े राजा बने होंगे कि छोटे छोटे बने? तो एक राजा जब बड़ा होगा तो दूसरे राज्य पर कभी आक्रमण किया होगा, कितने लोग मर गए होंगे, कभी जमींदार होंगे, किसी गरीब की जमीन ही हड़प ली होगी, बेचारा मर गया होगा। अब आया है वो बच्चा बनकर घर में तलवार लेकर, इसी ब्राह्मण परिवार में आसपास ऊपर साथी या नीचे हिसाब किताब चुकतू करने छोड़ेंगे नहीं, सारे हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे यहीं पर इसी परिवार में। इस परिवार से भी पेपर बहुत आएंगे, परंतु एक बात याद रखना है कि ये प्रभु परिवार है। ये क्या है? प्रभु परिवार है। हर आत्मा महान है, ये हिसाब किताब चुप्त हो रहे हैं, इसके लिए डरना नहीं। कल कहा था बाबा ने, बहादुर बनो, भयभीत नहीं होना, ये एक पेपर, तो इस पेपर को भी पार करना है। यदि इस परिवार से पेपर आता है तो धोखा, झूठा आरोप, कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है संसार में। अगला पेपर आर्थिक तूफान, आर्थिक अर्थात फाइनेंशियल पेपर। माला में कौन पिरोए जाएंगे आज की मुरली से? गरीब ते गरीब मारा में पिरोए जाएंगे। साकार महावाक्य है, मैं उन महलों में नहीं जाता जहां 56 प्रकार का भोग है, मैं उस झोपड़ी में जाता हूं जहां पर सूखी रोटी है। ये मुरलियों में महावाक्य आया है बाबा का। तो जीवन में धन का अभाव का भी पेपर आएगा। ऐसी परिस्थितियां निर्माण होगी कि धन का अचानक अभाव हो जाए, परंतु तब भी अचल और अडोल रहना है। जहां ज्ञान रत्न है स्थूल दंत स्वतः ही पीछे पीछे आ जाएगा, परंतु जब धन का अभाव है और मन में निगेटिविटी आ गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आकर्षण का नियम, जो संकल्प हम करते हैं वो प्रकृति में जाता है, प्रकृति में उसी तरह के संकल्पों को वो ढूंढता है और घटनाओं का निर्माण होता है। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, संकल्प प्रकृति में जाता है, गरीबी के संकल्पों को ढूंढता है और घटनाओं का निर्माण, और गरीबी आएगी। हमेशा सोचो मैं ज्ञान धन से संपन्न हूं, हमेशा सोचो कि मैं जैसे संकल्प हम करेंगे वैसे ही घटनाओं का निर्माण होगा। यदि कोई ये सोचे मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, वही कमजोरी का संकल्प वातावरण में जाएगा, दूसरी कमजोरी के संकल्प को अपनी तरफ खींचेगा और घटनाओं का निर्माण होगा। संकल्प कर रहा हूं। यदि अभाव है उसमें भी खुश, यदि धन है तो भी खुश, नहीं है तो भी स्थिति सेम, आज है कल नहीं रहेगी, ये भूलना नहीं है। आर्थिक पेपर भी आएगा, ये भी एक तूफान है, परंतु वहां पर अड़ोल रहना है। बाबा की भक्ति नहीं करनी है, शिव बाबा की भक्ति कौन कौन करता है माताओं में से? भक्ति, शिव बाबा धन दे दो, शक्ति दे दो, कौन कौन करता है? कोई नहीं। बाबा का क्या उत्तर है? अव्यक्त मुरली में आया है, माता है बाबा से कहती है, बाबा हमको शक्ति दे दो, तो बाबा कहते हैं अपनी पर्स खोल के देखो उसमें दी है, उसमें पहले से ही दे दी है। तो जहां धन का अभाव हो जाए, श्रेष्ठ संकल्पों से उस परिस्थिति को भी बदला जा सकता है। सूक्ष्म धन स्थूल धन को खींचेगा, इसलिए अपने सूक्ष्म धन को बढ़ाना है। सूक्ष्म धन है ज्ञान धन। अगला पेपर कितने हुए? चार, पांच। अगला, व्यर्थ और निगेटिविटी, वेस्ट और निगेटिविटी का तूफान। कभी कभी जीवन में इतना व्यर्थ आ जाता है, इतना निगेटिविटी आ जाती है कि जहां देखो वहां बस व्यर्थ ही व्यर्थ। ज्ञान में चल रहे हैं परंतु चर्चाएं चालू है व्यर्थ की, मौसम ऐसा है, राजनीति में यह चालू है, किसके घर में क्या चालू है, सब व्यर्थ। बाबा ने कहा है तुम्हें उससे क्या लेना देना, माइंड योर ओन बिजनेस। किसके घर में, किसके वैयक्तिक जीवन में क्या चालू है, तुम्हें उससे क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? ज्ञान का सिमिरन करना है। आज के सुबह के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हें क्या करना है? ज्ञान का सिमिरन करना है। अगर ज्ञान का सिमिरन नहीं हो रहा है तो व्यर्थ आएगा, व्यर्थ के साथ फिर निगेटिविटी भी आएगी, हर चीज के प्रति निगेटिव। और जहां व्यर्थ है वहां समर्थ नहीं हो सकता। यदि हमारे जीवन में व्यर्थ, पहले तो यह आइडेंटिफाई करना है, इसको जानना है, रिकॉग्नाइज करना है, मेरे जीवन में व्यर्थ क्या है? क्या वो कोई संबंध है? क्या किसी व्यक्ति के साथ का मेरा संबंध ज्ञान और योग के विपरीत है? क्या उसमें व्यर्थ समाया है? यदि किसी के साथ संबंध है तो क्या वो संबंध सेवा का है, ज्ञान चिंतन का संबंध है, या फिर कुछ और है? क्या है? चेकिंग करनी है स्वयं की। जो जो व्यर्थ है उसको कट करते जाना है, नहीं तो वो तूफान का रूप ले लेता है। कई आत्माओं को हमने देखा है, सेवा 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 सेवा, इतने खो गए हैं सेवा में कि मुरली सुनने का समय नहीं है। अच्छा, मुरली सुन भी ली, चिंतन करने का समय नहीं है, मनन करने का समय नहीं है, अध्ययन करने का समय नहीं है, चर्चा करने का समय नहीं है। जब तक ज्ञान का श्रेष्ठ अध्ययन, चिंतन, मनन नहीं होता, बुद्धि में ज्ञान नहीं गूंजेगा। और जहां बुद्धि में ज्ञान नहीं है, ज्ञान की बुलबुल जहां टिकलू टिकलू नहीं कर रही है, वहां कौवा आ जाएगा काव काव करने। व्यर्थ का साम्राज्य है संसार में, हमें इस व्यर्थ से स्वयं को सेफ रखना है। यह भी एक पेपर है, और अगर आ जाए तो युक्ति से निकलना है वहां से। अच्छी अच्छी पुरुषार्थ की क्लासेस सुनना, रोज कम से कम एक क्लास तो सुननी है सबको, जितने हमारे दादिया और वरिष्ठ भाई है उनकी, और उसमें से नोट्स निकालने। खाली सुनना नहीं है, कनरस नहीं है, भक्ति नहीं है, नोट्स निकालना, फिर नोट्स को रिवाइज करना, पढ़ना, उनकी स्टडी करनी है। अगर ज्ञान का चिंतन नहीं होता है तो व्यर्थ आएगा और फिर निगेटिविटी आएगी, सबके प्रति नकारात्मक भाव, इस ब्राह्मण परिवार के प्रति भी नकारात्मक भाव। कोई कोई आत्मा है ना, बाबा के लिए भी नकारात्मक भाव, पीछे बैठते हैं और बाबा आत्माओं से मिलते हैं तो कहते हैं बाबा क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सुधरने वाले थोड़ी है, ऐसे भी कहने वाले हैं। व्यर्थ का तूफान, निगेटिविटी का तूफान, इसलिए रोज मुरली से पावरफुल पॉइंट्स नोट करके रखने हैं। मुरली चिंतन की अभी अभी हमने मधुबन में एक क्लास कराई थी, 52 विधियां सुनी होगी शायद आप लोगों ने, उस पर काफी विस्तार से वहां पर होमवर्क और उसके ऊपर काम करते हैं सब लोग, तो उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे। मुरली का अध्ययन किस तरह किया जाए, बस वो एक ही मेथड, आए क्लास में बैठे मीठे बच्चे, प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, उत्तर के बाद में डायरी बंद बाजू में, फिर डोलते रहे थोड़े देर क्लास में, और फिर जैसे ही मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे एकदम से जागरण, और फिर से डायरी उठाना, फिर धारणा के लिए मुख्य सार 1-2, फिर वरदान, फिर उसका विश्लेषण, स्लोगन, डायरी बंद। अब सीधा कब खुलेगी, दूसरे दिन काम पूरा हुआ, अब चलो अपना बाकी का कारोबार चालू। कोई कोई माता है सेंटर पर ही टेबल के नीचे डायरी छोड़कर जाती है सीधा दूसरे दिन खोलने के लिए। अगर ऐसा ज्ञान योग चल रहा है तो जहां अब है 10 साल के बाद भी वहीं रहेंगे, यदि चिंतन नहीं हो रहा है तो यह भी एक पेपर है। अगला पेपर प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं का तूफान। अब सब कुछ अच्छा है पर अचानक भूकंप आ जाए, अब सब कुछ अच्छा है अचानक आग लग जाए, अब सब कुछ अच्छा है अचानक बिजली, कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा है मैं 1 सेकंड पहले 1 घंटे पहले भी नहीं बताऊंगा। जैन कहानी है एक, जिसमें दिखाया है एक जैन गुरु को एक व्यक्ति अपने घर पर बुलाता है जापान में, वो घर 7वीं मंजिल पर है, तो वो गुरु आते हैं तो प्रवचन चालू होता है, गुरु बैठे रहते हैं सामने बैठकर, सारे लगभग 40 लोग बैठे रहते हैं और अचानक भूकंप आ जाता है, सब लोग भागने लगते हैं, कोई सीढ़ी की तरफ कोई लिफ्ट की तरफ, क्योंकि भूकंप आया और भूकंप पे कुछ भी हो सकता है, सब हिलने लगा है डुलने लगा है, तो सब भाग रहे हैं, तो सब भागने लगते हैं, तो जो घर का मालिक होता है और जिसने उस गुरु को बुलाया होता है वो भी भागने लगता है, परंतु पीछे मुड़कर देखता है कि गुरु तो वहीं बैठे हैं चुपचाप और आंखें बंद है उनकी, शांत बैठे हैं, तो उनको लगता है कि मैंने इनको बुलाया और मैं ही भाग रहा हूं, कम से कम मुझे रुकना तो चाहिए, अच्छा जो इनका होगा फिर मेरा भी होगा, तो सोचता है मैं नहीं जाऊंगा मैं यहीं रहूंगा, और बाकी सब भाग जाते हैं। वो अपने गुरु के पास बैठ जाता है, थोड़ी देर में वो अर्थक्वेक शांत हो जाता है, वो भूकंप रुक जाता है, तो गुरु आंखें खोलते हैं, आंखें खोलने के बाद वहीं से अपना प्रवचन चालू करते हैं जहां छोड़ा था, तो व्यक्ति कहते हैं ये प्रवचन रहने तो बाजू में, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं क्या चालू था पहले भी, पहले तो ये बताओ कि आप भागे क्यों नहीं जबकि इतना बड़ा भूकंप आने वाला है, इतना बड़ा भूचाल। तो गुरु कहते हैं मैं भी भागा परंतु अंतर इतना था कि तुम सब बाहर भागे और मैं अंदर, बाहर तो चारों ओर भूकंप ही भूकंप है, एक ही जगह है जो अकंप है और वो है अंदर। एक ही जगह है जहां स्थिरता है, जो कंपित नहीं, वो है आत्माभिमानी स्थिति। तो परिस्थिति आएगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी, और ये होना है, ये भी तूफान आएगा, उसके लिए भी स्वयं को तैयार करना है। तो ऐसे ये आठ प्रकार के तूफान है, इन सभी तूफानों में जीत दिए की है यह पहले विश्वास चाहिए। तूफान भागेगा, तूफान भागा रे मैदान से। अच्छा, ओम शांति। अभी 5-10 मिनट का ब्रेक होगा और फिर अगली क्लास चालू होगी। कितने हुए? 7 हुए, 8 वाले को। बाहर की आत्माओं से आने वाला, एक तो कहा लौकिक, एक कहा अलौकिक। कुछ आत्माएं जो है बाहर की आत्माएं हैं, जैसे ऑफिस, जैसे फैक्ट्री, जैसे जहां हम काम करते हैं, उन आत्माओं के द्वारा एक पेपर आएगा। जैसे हमारे उसमें भी 3 प्रकार, एक हमारा बॉस, एक हमारे कॉलीग या साथी, दूसरे हमारे जूनियर, उनसे आने वाले पेपर, उनसे भी आएंगे। कोई ऐसा बॉस होगा किसी को जिसको ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल पसंद नहीं है, और जैसे ही हम छुट्टी का एप्लीकेशन रखते हैं बिल्कुल उदास हो जाता है, नाराज हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं जाना। जहां नौकरी करते हैं वहां के साथी, हम व्हाइट पहनते पहले तो उनको वो पसंद नहीं, उनसे भी पेपर आ सकता है। या फिर मतभेद है, फिलॉसॉफी बिल्कुल उनको पसंद नहीं है, बाकी सब अच्छा है, ये पवित्रता उनको पसंद नहीं है, या कुछ और दूसरी बात है जो पसंद नहीं है, वो बाहर वाले। कुछ साथी है, जूनियर्स भी है, कभी कभी उनसे भी पेपर आता है, उन वो भी तूफान का रूप ले लेते हैं। तो बाहर की आत्माएं, बाहर में सरकार भी आ रही है, बाहर में पुलिस भी आती है, बाहर में एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, बाहर में राजनेता, सब आता है। लौकिक और अलौकिक को छोड़कर बाहर जितनी आत्माएं हैं संसार में, उन सब के द्वारा भी पेपर आएंगे, परंतु हमें स्थिर रहना है, अड़ोल रहना है, और यह विश्वास रखना है कि चाहे ये आत्माएं जो भी करे, कहा कि हमें सहन करना है, हमें शुभ भावनाएं रखनी है, हमें विरोध प्रतिकार नहीं करना है। वो अज्ञान में है, उनका अभी कोई दोष नहीं है, जो कर रही है करने दो, और ये हमारा ही तो हिसाब किताब है उनके साथ। इसलिए उनके प्रति भी सूक्ष्म में भी घृणा भाव ना हो। ये एक शब्द याद रखना है कि बाबा की महावाक्य, यदि इस संसार की एक आत्मा के प्रति भी तुम्हारे मन में घृणा है, तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। घृणा इसलिए है कि वो हमारा विरोध करता है, घृणा इसलिए है क्योंकि वो हमारा अपमान करते हैं, घृणा इसलिए है क्योंकि व्यंग बाण चलाते हैं, घृणा इसलिए शायद किसी ने हमें धोखा दिया है, गलत आरोप लगाया है, हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी आरोप लगाया है कि तुमने ये किया है, तब क्या करेंगे? सत्य स्वयं सिद्ध है, सत्य के सूर्य को असत्य के बादल ढक नहीं सकते। यह हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है। बाबा निश्चय की बात करते हैं, सत्य पर हमारा निश्चय कितना है? एक जैन सन्यासी था जापान में, युवा सन्यासी और बहुत शक्तिशाली, शक्तिशाली अर्थात पवित्र, और ऐसा जो सन्यासी था, सारा गांव उसकी महिमा करता था, सारा गांव उसके चरणों में आकर झुकता था, और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि गांव की एक कन्या गर्भवती हो गई, अविवाहित कन्या। उसको पूछा गया इसका पति कौन, तो उसने कहा यह सन्यासी है, युवा सन्यासी। सारा गांव के गांव उस सन्यासी की झोपड़ी के पास आ गया, उसकी सन्यासी की झोपड़ी तोड़ दी। आज तक उसके चरणों में झुकते थे, आज उसकी झोपड़ी को आग लगा दी, सारा उसका सामान बाहर फेंक दिया, उसको भी बाहर निकाला। बिना उसको कुछ पूछे, उसको पूछने का कोई मौका नहीं दिया। और वो उसका अपमान किया। और कुछ दिनों के बाद जब वो बच्चा होता है तो फिर से वो गांव वाले आते हैं और वो बच्चा उसके चरणों में पटक देते हैं। दिखाया है उसमें कि अब वो पूछता है ये कौन है, वो कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा है। वो सन्यासी कहता है अच्छा मेरा है, ठीक है। वो सन्यासी उस बच्चे को लेकर जो इतना रो रहा है, उसकी मां नहीं है, कहां है, उसकी मां तो गांव में है, तो वो उसको बहुत शांत करने की कोशिश करता है, वो शांत नहीं होता है। अब बच्चे को लेकर भीख मांगने जाता है, कितना कैसा दृश्य है ये, सन्यासी उसके हाथ में एक बच्चा, उसको लेकर भीख मांगने जाता है। जिस घर के सामने जाता है दरवाजा बंद, कोई उसे भीख नहीं देता है, भिक्षा नहीं देता है। और एक दिन उसी घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है जहां पर वो स्त्री रहती थी, वो कन्या। और वो जब ये दृश्य देखती है उसको लगता है मैंने ये क्या पाप कर दिया, इस बच्चे के सही पिता को छिपाने के लिए मैंने इस सन्यासी का नाम ले लिया। और वो अपने पिता से जाके कहती है कि ये सन्यासी निर्दोष है। पिता और सारा गांव फिर से सन्यासी के चरणों में उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। सन्यासी कहता है अच्छा ये मेरा नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी और का होगा। कोई क्रोध नहीं, कोई आवेग नहीं, अखंड पवित्रता पर संपूर्ण विश्वास, सत्य पर विश्वास। तो पेपर तो सबको आएंगे और पवित्रता पर कलंक, यह भी एक पेपर है। सबसे बड़ा पेपर ब्राह्मण जीवन का एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट जिसको कहते हैं। तो ऐसे ये 8 पेपर, इन पेपर में, इन परीक्षाओं में, इन तूफानों में जीत दिए की है, जीत सत्य की है। ओम शांति।